अध्ययन लेख 43। इस लेख का अध्ययन 21 से 27 दिसंबर के दौरान किया जाएगा। विषय, यहोवा अपने संगठन को चला रहा है। ये लेख जकरिया 4:6 पर आधारित है, जहां लिखा है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा कहता है, न किसी सेना से न ताकत से बल्कि मेरी पवित्र शक्ति से यह सब होगा। गीत 40, हम किसके हैं। लेख की एक झलक। क्या आपको पूरा यकीन है कि आज यहोवा ही अपने संगठन को चला रहा है? इस लेख में हम देखेंगे कि यहोवा ने कैसे पहली सदी की मसीही मंडली का मार्गदर्शन किया था और आज भी वो कैसे अपने संगठन को चला रहा है। पैराग्राफ 1, सवाल, बपतिस्मे के बाद भी यहोवा के सेवकों को क्या करते रहना है? क्या आपको वो दिन याद है जब आपका बपतिस्मा हुआ था? बेशक आप वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। बपतिस्मा लेकर आपने सब पर यह जाहिर किया था कि आपको यहोवा पर विश्वास है और आप उसके संगठन के साथ मिलकर उसकी सेवा करना चाहते हैं। फुटनोट, इसका क्या मतलब है? यहोवा के संगठन के दो हिस्से हैं, एक स्वर्ग में है और दूसरा धरती पर। इस लेख में हम यहोवा के संगठन के उस हिस्से की बात करेंगे जो धरती पर है। फुटनोट समाप्त। अब जब आपका बपतिस्मा हो चुका है तो आपको यहोवा पर अपना विश्वास बढ़ाते जाना है और इस बात पर अपना भरोसा मजबूत करना है कि आज यहोवा ही अपने संगठन को चला रहा है। पैराग्राफ 2 और 3, सवाल, यहोवा आज अपने संगठन को जिस तरह चला रहा है उससे क्या पता चलता है? समझाने के लिए 3 बातें बताइए। अब हम गौर करेंगे कि यहोवा अपने संगठन को किस तरह चला रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि यहोवा में क्या क्या खूबियां हैं, वो अपने संगठन के जरिए आज क्या काम करवा रहा है और उसके स्तर क्या हैं। आइए हम यहोवा की 3 खूबियों पर गौर करें। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। प्रेषितों 10:34, यहोवा सबसे प्यार करता है, इसलिए उसने सबकी खातिर फिरौती के रूप में अपना बेटा दे दिया। 1 तिमोथियस 2:6, यहोवा अपने लोगों के जरिए सब तक खुशखबरी पहुंचा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिरौती पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। दूसरी बात, यहोवा शांति का परमेश्वर है और हर काम कायदे से करता है, इसलिए उसके उपासकों को भी शांति बनाए रखनी चाहिए और हर काम कायदे से करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि यहोवा महान उपदेशक है। 30:20-21, इसलिए उसके संगठन में उसके वचन के बारे में सिखाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। मंडली में भी सिखाया जाता है और बाहर के लोगों को भी सिखाया जाता है। 1 सदी में मसीही मंडलियां जिस तरह काम कर रही थीं, क्या उससे यहोवा की ये 3 खूबियां नजर आईं? आज यहोवा का संगठन जिस तरह काम करता है, क्या उसमें भी ये खूबियां नजर आती हैं? यहोवा के संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए पवित्र शक्ति कैसे आपकी मदद कर सकती है? परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। पैराग्राफ 4, सवाल क, जैसे प्रेषितों 1:8 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को कौन सा काम करने की आज्ञा दी? सवाल ख, ये काम करने के लिए क्या बात उनकी मदद करती? 1 सदी में यीशु ने परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया क्योंकि इसी से सब इंसानों को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि उसके जाने के बाद वो ये काम करते रहें और दुनिया के सबसे दूर के इलाकों में जाकर राज का संदेश सुनाएं। प्रेषितों 1:8 में लिखा है, लेकिन जब तुम पर पवित्र शक्ति आएगी तो तुम ताकत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि दुनिया के सबसे दूर के इलाकों में मेरे बारे में गवाही दोगे। ये बहुत भारी काम था और वो ये काम अपने बल पर नहीं कर सकते थे, उन्हें पवित्र शक्ति की जरूरत होती। इसलिए यीशु ने उनसे वादा किया कि वो एक मददगार के रूप में पवित्र शक्ति उन्हें देगा। पैराग्राफ 5 और 6, सवाल, पवित्र शक्ति की मदद से चेले क्या कर पाए? यीशु के चेलों को ईसवी सन 33 के पिंतेकुस्त के दिन पवित्र शक्ति मिली। पवित्र शक्ति से ताकत पाकर उन्होंने तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ ही समय के अंदर हजारों लोग विश्वासी बन गए। चेलों का विरोध किया गया, फिर भी वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर से मदद के लिए विनती की। उन्होंने परमेश्वर से यह प्रार्थना की, अपने दासों की मदद कर कि वो पूरी तरह निडर होकर तेरा वचन सुनाते रहें। इसके बाद वो पवित्र शक्ति से भर गए और निडर होकर परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रेषितों 4:18-20, 29 और 31। यीशु के चेलों के सामने कुछ और भी मुश्किलें थीं। एक मुश्किल ये थी कि बहुत कम लोगों के पास पवित्र शास्त्र था। उनके पास बाइबल की समझ देने वाला कोई प्रकाशन नहीं था, जैसे आज हमारे पास है। चेलों को कई भाषाएं बोलने वाले लोगों को प्रचार करना था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद वो जोश से प्रचार करते रहे, इसलिए 30 साल के अंदर पूरी दुनिया में खुशखबरी फैल गई। इस तरह उन्होंने वो काम कर दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन है। कुलुसियों 1:6-23। पैराग्राफ 7, सवाल क, आज से कई साल पहले यहोवा के सेवकों ने कैसे जाना कि यहोवा ने उन्हें प्रचार काम करने के लिए चुना है? सवाल ख, ये जानकर उन्होंने क्या किया? आधुनिक समय में, पहली सदी की तरह आधुनिक समय में भी यहोवा अपने लोगों को निर्देश देता रहा है और उसका काम करने के लिए उन्हें ताकत देता रहा है। वो खास तौर से अपने वचन बाइबल के जरिए निर्देश देता आया है, जिसे पवित्र शक्ति की प्रेरणा से लिखा गया था। उसका वचन पढ़ने से हम जान पाते हैं कि यीशु ने कैसे सेवा की थी और उसने अपने चेलों को आज्ञा भी दी थी कि उसने जो काम शुरू किया था उसे वो जारी रखें। कई साल पहले जुलाई 1881 में प्रहरीदूर पत्रिका में कहा गया था, यहोवा ने हमें क्यों चुना है या किस लिए हमारा अभिषेक किया है? दौलत बटोरने या नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे पास जो भी है उसे खुशखबरी का प्रचार करने में लगा दें और खुद भी लग जाएं। सन 1919 में जिन्हें काम सौंपा गया नाम की एक अंग्रेजी पुस्तिका प्रकाशित की गई। उसमें लिखा था, हमारे पास काम बहुत है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। ये काम हमें प्रभु ने सौंपा है, तो वो इसे करने में हमारी मदद भी करेगा। पहली सदी के मसीहियों की तरह आधुनिक समय के भाई बहन भी हिम्मत से आगे बढ़े और इस काम में पूरी तरह लग गए। उन्हें भरोसा था कि पवित्र शक्ति की मदद से वो सब किस्म के लोगों को प्रचार कर पाएंगे। आज हमें भी पूरा भरोसा है कि पवित्र शक्ति हमारी मदद करेगी। पैराग्राफ 8 और 9, सवाल, यहोवा के संगठन ने खुशखबरी का जोर शोर से प्रचार करने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल किए हैं? यहोवा का संगठन खुशखबरी सुनाने के लिए बढ़िया से बढ़िया साधन इस्तेमाल करता आया है। संगठन ने किताबें पत्रिकाएं प्रकाशित की, सृष्टि का चलचित्र दिखाया, रिकॉर्ड किए गए भाषण ग्रामोफोन से सुनाए, गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर संदेश सुनाया, रेडियो पर कार्यक्रम पेश किए और बीते कुछ सालों से हम कंप्यूटर और इंटरनेट का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहोवा का संगठन पहले से कहीं ज्यादा भाषाओं में अनुवाद का काम कर रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सब किस्म के लोग अपनी अपनी भाषा में खुशखबरी सुन सकें। यहोवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और उसने पहले ही बता दिया था कि राज की खुशखबरी हर राष्ट्र, गोत्र, भाषा और जाति के लोगों को सुनाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य 14:6-7, वो चाहता है कि ये संदेश सुनने का मौका सबको मिले। क्या ऐसे लोगों को भी संदेश सुनने का मौका मिल सकता है जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं और जहां हमें जाने की इजाजत नहीं मिलती? ऐसे लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए संगठन ने सरेआम गवाही देने का इंतजाम किया है। सन 2001 में शासी निकाय ने फ्रांस के भाई बहनों को कार्ट या टेबल वगैरह लगाकर सरेआम गवाही देने की इजाजत दी। बाद में दूसरे देशों में भी ऐसा किया गया। इस तरह गवाही देने के बहुत अच्छे नतीजे मिले। सन 2011 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सरेआम गवाही देने का एक नया इंतजाम किया गया। इसके पहले साल में ही लोगों ने 1,02,129 किताबें और 68,911 पत्रिकाएं ली और 4,701 लोगों ने कहा कि वो बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं। इन अच्छे नतीजों को देखकर शासी निकाय ने पूरी दुनिया में कार्ट और टेबल लगाकर गवाही देने की मंजूरी दे दी। वाकई सरेआम गवाही देने में पवित्र शक्ति हमारी मदद कर रही थी। पैराग्राफ 8 और 9 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, यहोवा का संगठन खुशखबरी सुनाने के लिए बढ़िया से बढ़िया साधन इस्तेमाल करता है। पैराग्राफ 10, सवाल, हम प्रचार और सिखाने का काम अच्छी तरह करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? सभाओं में यहोवा हमें सिखाता है कि प्रचार कैसे करना चाहिए। वहां जिस तरह सिखाया जाता है उसी तरह प्रचार कीजिए। अपने प्रचार समूह के भाई बहनों के साथ नियमित तौर पर प्रचार कीजिए। उनकी मिसाल से आपको हौसला मिलेगा और आप और भी अच्छी तरह प्रचार करना सीखेंगे। आपके सामने कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, फिर भी इस काम में लगे रहिए। इस लेख की मुख्य आयत से हम यही सीखते हैं कि हम परमेश्वर की मर्जी अपनी ताकत से नहीं पवित्र शक्ति की मदद से कर पाते हैं। हम भरोसा रख सकते हैं कि यहोवा हमें ताकत देता रहेगा, क्योंकि हम उसी का काम कर रहे हैं। यहोवा शांति का परमेश्वर है और हर काम कायदे से करता है। पैराग्राफ 11, सवाल, पहली सदी में शासी निकाय के भाइयों ने कैसे साथ मिलकर काम किया ताकि सब कुछ कायदे से हो? पहली सदी में यरूशलेम में शासी निकाय के भाइयों ने साथ मिलकर काम किया ताकि परमेश्वर के लोगों के बीच शांति बनी रहे और सब काम कायदे से हों। एक वाक्य पर गौर कीजिए। ईसवी सन 49 के आसपास यहोवा के लोगों के बीच इस बात को लेकर मतभेद और बढ़ गया कि क्या हर मसीही को खतना करवाना चाहिए। शासी निकाय ने पवित्र शक्ति का मार्गदर्शन पाकर इस मामले पर काफी चर्चा की। अगर मसीहियों के बीच से ये मतभेद दूर नहीं होता तो वो ठीक से प्रचार नहीं कर पाते। शासी निकाय प्रेषितों और कुछ बुजुर्गों से बना था और ये सभी भाई यहूदी थे। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि यहूदी जो सदियों से करते आए हैं वही सही है। ना ही वो उन भाइयों की बातों में आ गए जो इस बात पर अड़े थे कि खतना करवाना हर हाल में जरूरी है। उन्होंने सही फैसला करने के लिए परमेश्वर के वचन में छानबीन की और परमेश्वर से पवित्र शक्ति के लिए विनती की। नतीजा क्या हुआ? वो सही फैसला कर पाए और यहोवा उनके फैसले से खुश हुआ। इस वजह से मंडलियों की शांति और एकता बनी रही और प्रचार काम तेजी से आगे बढ़ता गया। पैराग्राफ 12, सवाल, हम क्यों कह सकते हैं कि यहोवा के संगठन में शांति और कायदा है? आधुनिक समय में यहोवा के संगठन ने काफी मेहनत की है ताकि यहोवा के लोगों के बीच शांति बनी रहे और सब काम कायदे से हों। आज से कई साल पहले 1895 में सियोन का प्रहरी दुर्ग और मसीह की उपस्थिति का उद्घोषक पत्रिका के 15 नवंबर के अंक में एक लेख आया था। उसका शीर्षक था, कायदे से और अच्छे इंतजाम के मुताबिक, जो पहला कुरिन्थियों 14:40 से लिया गया था। लेख में कहा गया था, प्रेषितों ने सब काम कायदे से करने के बारे में शुरू की मंडली को काफी बातें लिखी थीं। जो बातें शास्त्र में पहले से लिखी गई हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। उन बातों को मानना बेहद जरूरी है। रोमियो 15:4। पहली सदी की तरह आज भी संगठन में काफी मेहनत की जाती है, इसलिए मंडलियों में शांति रहती है और सब काम कायदे से किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रहरी दुर्ग अध्ययन पूरी दुनिया में एक ही तरीके से चलाया जाता है। इसलिए आप चाहें अपने देश की किसी और मंडली में जाएं या दूसरे देश की किसी मंडली में, आपको पता रहता है कि अध्ययन कैसे चलाया जाएगा और किस लेख पर चर्चा की जाएगी। आपको कुछ अलग सा या नया नहीं लगेगा। परमेश्वर की पवित्र शक्ति की वजह से ही पूरी दुनिया की मंडलियों में ऐसी एकता है। पैराग्राफ 13, सवाल, याकूब 3:17 को ध्यान में रखते हुए हमें खुद से कौन से सवाल करने चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? यहोवा चाहता है कि उसके लोगों के बीच शांति रहे और वो एकता के बंधन में बंधे रहें जो कि पवित्र शक्ति से हासिल होती है। इफिसियों 4:1-3। खुद से पूछिए, क्या मैं मंडली में शांति और एकता को बढ़ावा देता हूं? क्या मैं जिम्मेदारी संभालने वाले भाइयों की बात मानता हूं? क्या मैं भरोसेमंद हूं? क्या मैं समय का पाबंद हूं, दूसरों की मदद करता हूं और क्या मेरे अंदर सेवा करने की भावना है? अगर आपको मंडली में कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं उसे अच्छी तरह निभाता हूं। याकूब 3:17 में लिखा है, लेकिन जो बुद्धि स्वर्ग से मिलती है वो सबसे पहले तो पवित्र, फिर शांति कायम करने वाली, लिहाज करने वाली, आज्ञा मानने के लिए तैयार, दया और अच्छे कामों से भरपूर होती है। ये भेदभाव नहीं करती और ना ही कपटी होती है। अगर आपको इनमें से किसी मामले में सुधार करने की जरूरत है तो पवित्र शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जब पवित्र शक्ति आप पर काम करेगी तो आप अच्छे गुण बढ़ा पाएंगे और ये आपके व्यवहार में भी नजर आएगा। तब भाई बहन आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपको अनमोल समझेंगे। यहोवा हमें अच्छी शिक्षा देता है। पैराग्राफ 14। सवाल का, कुलुसियों 1:9-10 के मुताबिक पहली सदी के मसीहियों को किस चीज की जरूरत थी? सवाल खा, यहोवा ने वो जरूरत कैसे पूरी की? पहली सदी में अपने लोगों को सिखाने में यहोवा को खुशी होती है। वो हमें इसलिए सिखा रहा है ताकि हम उसे जानें, उससे प्यार करें और भविष्य में उसके प्यारे बच्चों के नाते हमेशा तक जिएं। अगर यहोवा हमें नहीं सिखाता तो ये सब मुमकिन नहीं होता। पहली सदी में मसीहियों को भी सही ज्ञान की जरूरत थी और यहोवा मसीह मंडली के जरिए उन्हें सही ज्ञान देता रहा। कुलुसियों 1:9-10 में लिखा है, इसी वजह से हमने भी जिस दिन तुम्हारे इस प्यार और विश्वास के बारे में सुना था, उस दिन से तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और ये मांगना नहीं छोड़ा कि तुम सारी बुद्धि और पवित्र शक्ति से मिलने वाली समझ के साथ उसकी मर्जी के बारे में सही ज्ञान से भर जाओ, ताकि तुम्हारा चालचलन ऐसा हो जैसा यहोवा के सेवक का होना चाहिए, जिससे कि तुम उसे पूरी तरह खुश कर सको और तुम हर भला काम करते हुए फल पैदा करते जाओ और परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान बढ़ाते जाओ। उन्हें मंडली के अलावा पवित्र शक्ति से भी काफी मदद मिली। यीशु ने वादा किया था कि वो उन्हें एक मददगार के रूप में पवित्र शक्ति देगा। पवित्र शक्ति की मदद से उन्होंने परमेश्वर के वचन को गहराई से समझा। यीशु ने जो बातें सिखाई थीं और जो काम किए थे वो सब पवित्र शक्ति ने उन्हें याद दिलाया, इसलिए ये सब वो खुशखबरी की किताबों में लिख पाए। यही वजह है कि शुरू के मसीहियों को परमेश्वर की मर्जी के बारे में सही ज्ञान मिलता रहा, उनका विश्वास मजबूत होता गया और यहोवा, उसके बेटे और एक दूसरे के लिए उनके दिल में प्यार बढ़ता गया। पैराग्राफ 15। सवाल, आपने यशाया 2:2-3 में बताई भविष्यवाणी को कैसे पूरा होते देखा है? आधुनिक समय में यहोवा ने भविष्यवाणी की थी कि आखिरी दिनों में सब राष्ट्रों के लोग उससे सीखेंगे, वो उससे शिक्षा पाने के लिए उसके पहाड़ पर आएंगे, यानी सच्ची उपासना करने वालों के साथ जुड़ जाएंगे। यशाया 2:2-3 में लिखा है, आखिरी दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर बुलंद किया जाएगा और सभी पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। राष्ट्रों के लोग धारा के समान उसकी ओर आएंगे, देश देश के लोग आएंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के परमेश्वर के भवन की ओर जाएं, वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसकी राहों पर चलेंगे, क्योंकि सियोन से कानून दिया जाएगा और यरूशलेम से यहोवा का वचन। आज हमारी आंखों के सामने ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ये साफ दिख रहा है कि सच्ची उपासना सब किस्म की झूठी उपासना से श्रेष्ठ है। आज यहोवा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के जरिए सच्चाई का भरपूर ज्ञान दे रहा है। मती 24:45। ये ज्ञान हमें कितने ही अलग अलग तरीकों से मिलता है, जैसे हमें प्रकाशनों में लेख पढ़ने को मिलते हैं, कई भाषण सुनने को मिलते हैं और कार्टून और वीडियो देखने को मिलते हैं। यहोवा के बारे में हम भी अय्यूब के दोस्त एलीहू की तरह महसूस करते हैं, सिखाने में परमेश्वर जैसा कोई नहीं। अय्यूब 36:22। पैराग्राफ 16। सवाल, यहोवा से सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में आप जो पढ़ते हैं और जो अध्ययन करते हैं उसके मुताबिक चलने में पवित्र शक्ति आपकी मदद करेगी। भजन के एक रचयिता की तरह ये प्रार्थना कीजिए, हे यहोवा, मुझे अपनी राह के बारे में सिखा, मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलूंगा, मेरे मन को एक कर कि मैं तेरे नाम का डर मानूं। भजन 86:11। बाइबल और संगठन से मिलने वाले प्रकाशन पढ़ते रहिए और उनका अध्ययन करते रहिए। बेशक आपको सिर्फ जानकारी लेने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इस इरादे से पढ़ना चाहिए कि बाइबल की बातें आपके दिल की गहराई में बस जाएं और आप सीखने वाली बातों को लागू करें। यहोवा की पवित्र शक्ति की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने भाई बहनों का विश्वास मजबूत कीजिए। आपको ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो भी आपका परिवार हैं। पवित्र शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आप सभाओं में दिल से जवाब दे सकें और आपको जो भाषण या प्रदर्शन पेश करने होते हैं वो अच्छे से पेश कर सकें। जब आप ऐसा करेंगे तो यहोवा और उसके बेटे को ये देखकर कितनी खुशी होगी कि आप उनकी अनमोल भेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। पैराग्राफ 16 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक पाइनियर बहन वीडियो में देख रही है कि कुछ भाई बहन ऐसी जगह सेवा कर रहे हैं जहां प्रचारकों की बहुत जरूरत है। उन्हें देखकर वो लक्ष्य रखती है कि वो भी जरूरत वाली जगह जाकर सेवा करेगी। आखिरकार वो अपना लक्ष्य पा लेती है। चित्र शीर्षक, बाइबल की बातें दिल की गहराई में बसा लीजिए और उनके मुताबिक चलिए। पैराग्राफ 17। सवाल, यहोवा के संगठन से जुड़े रहकर आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब धरती पर सिर्फ एक ही संगठन रह जाएगा, यहोवा का संगठन, जो उसकी पवित्र शक्ति के निर्देश पर चलता है। यहोवा के संगठन के साथ मिलकर पूरे जोश से सेवा कीजिए। परमेश्वर की तरह सब लोगों से प्यार कीजिए, भेदभाव मत कीजिए और सब लोगों को खुशखबरी सुनाइए। मंडली में एकता को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि यहोवा चाहता है कि सब काम शांति से और कायदे से हों। और आपका महान उपदेशक आपको सच्चाई का जो भरपूर ज्ञान दे रहा है उसे लेते रहिए। जब शैतान की दुनिया का अंत होगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप निडर रहेंगे, क्योंकि आप यहोवा के संगठन के साथ मिलकर सेवा कर रहे होंगे। आपका जवाब क्या होगा? यहोवा का संगठन क्या कर रहा है ताकि हम सब लोगों को प्रचार कर सकें? संगठन ने सारे काम कायदे से और शांति से करने के लिए कैसा इंतजाम किया है? यहोवा का संगठन कैसे हमें सच्चाई का भरपूर ज्ञान देता है? गीत 3, हमारी ताकत, आशा और भरोसा। लेख समाप्त।